ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ वनचारी कायो राधा माधव कुंज बिहारी कायो राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णु पात्रम हंस परिवार आचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणार अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पात्रम हंस परिवार आचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। ताई गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटी ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अध्याय क्रमांक श्लोक क्रमांक है 64 ना नानुभूतं क्वचानेन देहना दृष्टतम अश्रुतम कदाचिद् उपलब्धेत यद्रूपं यद् कात्मनि नानुभूतं पचानेन देहनादृष्टमश्रुतम् कदाचिद् उपलभ्येत यद्रूपं यद् गात्मनि नानुभूतं क्वचानेन देहनादृष्टम् अश्रुतम् कदाचित् उपलभ्येत यद्रूपं यद्गात्मनि
कदाचित् उपलभ्येत Matajis?
तो हम शब्दार्थ और भाषांतर और तात्पर्य अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में कर देने की कोशिश करें। ना नेवर अनुभूतम एक्सपीरियंस्ड क्व एट एनी टाइम च ऑल्सो अनेन देहेन बाय दिस बॉडी अदृष्टम नेवर सीन अश्रुतम नेवर हर्ड कदाचित समटाइम्स उपलब्धेत मे बी एक्सपीरियंस्ड यत विच रूपम फॉर्म यद्रक वट एवर काइंड आत्मनी इन द माइंड। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sometimes we suddenly experience something that was never experienced in the present body by sight or hearing. Sometimes we see such things suddenly in dreams. Purport. In dreams, we sometimes see things that we have never experienced in the present body. Sometimes in dreams, we think that we are flying in the sky, although we have no experience of flying. This means that once in a previous life, either as a demigod or astronaut, we flew in the sky. The impression is there in the stockpile of the mind, and it suddenly expresses itself. It is like fermentation taking place in the depth of the water, which sometimes manifests itself in bubbles on the water's surface. Sometimes we dream of coming to a place we have never known or experienced in this lifetime. But this is a proof that in a past life we experienced this. The impression is kept within the mind and sometimes becomes manifest either in dream or in the thought. The conclusion is that the mind is the storehouse of various thoughts and experiences undergone during our past lives. Thus, there is a chain of continuation from one life to another, from previous lives to this life, and from this life to future lives. This is also sometimes proved by saying that a man is a born poet, a born scientist, a born devotee. If like Maharaj Amrish, we think of Krishna constantly in this life, Savai Manah Krishna Padaravindayor, we will certainly be transferred to the kingdom of God at the time of death. Even if our attempt to be Krishna conscious is not complete, our Krishna consciousness will continue in the next life. This is confirmed in Bhagavad Gita 6:41. Prapya punya kritam lokan ushitva shashvate samaha shuchinam shrimatam gehe yoga vrashto vijayate. The successful yogi, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into the family of the righteous people or into the family of the rich aristocracy. If we rigidly follow the principles of meditation on Krishna, there is no doubt that in our next life we will be transferred to Krishna Loka, Goloka Vrindavan. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोधिष्ठं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं సాగ్రజాతాం సహగణ రఘునాథాన్వితాం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణా లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామిని నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరతుషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసది గౌరభక్తవింద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. तो सभी आप भक्तों का आशीर्वाद चाहते हैं जिसके बलबूते पे हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करने का कोशिश करेंगे. तो आप ये शायद मैं बहुत दिन के बाद क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं था कहाँ से कहाँ लिंक जा रहा है प्राचीन परिषद और नारद मुनि के डिस्कशन में. तो यहाँ पे नारद मुनि प्राचीन परिषद को जीव कैसे अपना प्रवास करता है इस दुनिया में इसके ऊपर वर्णन करते हैं. तो यहाँ आते हैं कि उसके जीवन में एक समय में वो ऐसा भी एक्सपीरियंस करता है जो उसने कभी अपने जीवन में देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है. तो अगर हम श्रील प्रभुपाद फिर अपने तात्पर्य में उसको पूरा करते हैं कि ये चीज़ें जो हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही. जिस भी चीज़ के बारे में अगर हमारे जीवन में हम ऐसी चीज़ को कभी देखा नहीं है, ऐसी चीज़ को कभी सुना नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे अगर वैज्ञानिक तरीके से भौतिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं तो बेचारे श्रील प्रभुपाद उनकी मजाक उड़ाते पूअर फंड ऑफ नॉलेज बोल के कि उनको बेचारे को नॉलेज नहीं, इसलिए कुछ तो भी एक्सप्लेनेशन. बिना ज्ञान के जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो वर्णन होता है, बड़ा मन घड़ित होता है. तो वो बोल देते हैं कि वो कुछ तो बाय चांस हो रहा है, मगर बाय चांस कुछ होता नहीं है. तो उनका मन भी है, उनका मन भी उनके अपने जीवन के एक्सपीरियंस के जैसे काम कर रहा है. उसी तरह शास्त्र में बताया कि वो बाय चांस नहीं हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है. श्री प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में कि अगर हम मनुष्य है और हम अगर नींद में या कभी अभी सोच रहे तो हमको लगता है हमको हवा में उड़ना चाहिए, या हम देख रहे हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं ऑलरेडी उड़ भी नहीं रहे तो भी हमको लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं. प्रभुपाद बोलते हैं कि पहले के जीवन में शायद योगी हो सकता है, एस्ट्रोनॉट हो सकता है. मेरे को आश्चर्य लगा प्रभुपाद ने
कौवा नहीं हो सकता, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उनके एक्सप्लेनेशन के स्टाइल से तो उन्होंने लिखा है कि पहले जीवन में उसने कौवा होना चाहिए, इसलिए अभी इस जीवन में उड़ने की इच्छा हो रही है। मगर शायद अच्छी डिग्निटी मेंटेन आदमी का, अच्छा आदमी उड़ने का सोच रहा है, इसलिए शायद वो बोल रहे हैं कि शायद एस्ट्रोनॉट होगा, कोई योगी होगा, एक जगह से दूसरे जगह उड़ रहा होगा। मगर जरूरी नहीं है एस्ट्रोनॉट ही होना चाहिए, योगी होना चाहिए, कौवा भी हो सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं। जो प्रभुपाद बोल नहीं रहे हो, आपने को कंप्लीट करने के लिए बोला है प्रभुपाद ने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि एस्ट्रोनॉट ही होना चाहिए। हर एक आदमी जो उड़ना चाहता है, जरूरी नहीं है एस्ट्रोनॉट होना चाहिए, वो कौवा भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकती है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, गिद्ध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर पिछले के जब हम अपने जीवन को देखते हैं और ये सब सुनते हैं, तो हमारे शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रकटित करते हैं सारे एक्सप्लेनेशन, ये सारे स्पष्टीकरण। पुनर्जन्म का सिद्धांत है, अगर हमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, हमें बहुत सारे जीवन, बहुत सारे स्पष्टीकरण से हम समझ सकते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं आपने अलग अलग लेक्चर में, मगर पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो इस चीज से भी हमको पता चल सकता है कि ये पुनर्जन्म का सिद्धांत कैसे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि अगर हम बाह्य शरीर को भी लेके नहीं जा रहे होंगे एक जीवन से दूसरे जीवन तक, कम से कम अंदरूनी जो शरीर है, सटल बॉडी जो है, सूक्ष्म शरीर है, उसको लेके चल रहे हैं, और उसको लेके चलने के वजह से हम पिछले वाले जो शरीरों के जो हमारे अनुभव है, पिछले वाले शरीर के हमारे जो कार्यकलाप है, उसको ये नए वाले स्थूल शरीर में हम उसको प्रकटित करते हैं। हमारा बाह्य शरीर बदल चुका है, मगर अंदरूनी शरीर अभी भी वही है। क्या बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं? हरे कृष्णा वाले बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग तो बदलने की कोशिश तो नहीं कर सकते, क्योंकि बदलने के लिए कुछ है ही नहीं। बदलने के लिए पिछले जीवन में भौतिक जीवन जिया है, उसके पहले जीवन में भौतिक जीवन जिया है, उसके पहले जीवन में भौतिक जीवन जिया है, उसके पहले जीवन में भौतिक जीवन जिया है, अभी क्या करना है? वही कंटिन्यू करना है, और क्या करना है। तो इसलिए उनको बाहरी शरीर बदलते रह रहे हैं, अंदरूनी शरीर वो बदलने के मूड में नहीं है, और ये चलते रहता है। कितना कब तक चलेगा? जब तक चेंज, बदल करने का कार्यक्रम चालू नहीं होगा तब तक चलेगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कब तक चलेगा? आप कौन सा तो भाव, अपना जीवन का एक भाव प्रकट करने का, इस ये जीवन हमारा ये भाव है, उस जीवन में हमारा वो भाव है, और वो भाव प्रकट करके फिर दूसरा शरीर प्राप्त करने का, जिसमें वो भाव कंप्लीट हो जाता है। आज मैं आज के शरीर में कुछ तो विचार प्रकट कर रहा हूँ, और वो भाव इस शरीर में तो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो इच्छा की है मैंने, तो फिर क्या होगा? अगले शरीर में मोह कब प्रकट होगा? वो अगले शरीर में दूसरा भाव, एक चीज से जीव संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको कृष्ण चाहिए जो अनंत है। तो इसलिए एक इच्छा से, एक अनुभव से, एक कार्य से जीव संतुष्ट नहीं होता, उसको अनलिमिटेड वाला कोई तो चीज चाहिए जो कुछ भी कर सकता है। इसलिए भगवान भी अनंत लीला करते हैं, जो भी चाहिए ले लो, है कि नहीं? तो ये हमारे शास्त्र बताते रहते हैं। और कब तक ये जीवन चलेगा उसका? जब तक वो अपना अंदरूनी सूक्ष्म शरीर बदलने का कोशिश जब तक नहीं करेगा, तब तक वो चलता रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन को जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन। तो हम जो सिखाते हैं नए नए लोगों को मनुष्य जीवन को जंक्शन से, तो बाकी जंक्शन के अलावा जो गाड़ी आती है तो कहीं नहीं जाती है वो गाड़ी। वो बोल नहीं सकती मैं इधर जाने की बजाय उधर जा सकते हूँ, कुछ नहीं। इधर से आने का, उधर से जाने का, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं। तो बाकी सब जीव जो सूक्ष्म शरीर बदलने का कंसेप्ट ही नहीं पता उनको, दुर्दैव से बाह्य शरीर है, अंदरूनी शरीर है, उसके अंदर आत्मा है, हम इतना भाग्यशाली है कि हम ये सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मगर लोगों के लिए सब खिचड़ी है। बाह्य शरीर क्या है, अंदर का शरीर क्या है, उसके अंदर आत्मा क्या है, उसके परमात्मा क्या है, बेचारों इतना दुर्दैव है कि क्या 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 है वो भी पता नहीं है। और राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, एक शायद वो अजामिल की कथा में वो बोलते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए कोई बड़ा ज्योतिषी, कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई भी समझ सकता है हम कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन हम कहाँ से आ रहे हैं, हम जैसे बर्ताव कर रहे हैं उससे हमको पता चलता है हम कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम नरक में ट्रेनिंग लेके ऊपर आए हैं तो विवाद करना, गाली देना, ये करना, वो करना है कि नहीं, वो नेचुरल है क्योंकि ट्रेनिंग हो चुका है उधर नरक में, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा आसान जाता है उसको। उधर कहाँ देखा उसने, उधर मारपीट देखा, उधर यमदूत एक दूसरे को, बाकी जीव जो पकड़ के लाए उनको, हाँ बड़ा खराब तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो देख के आए, उसको लगता है यही जीवन है। कितने सारे लोग अपने जीवन में जो जीवन में अपने अनुभव करते हैं छोटे बचपन में, उनको लगता है यही जीवन है। एक व्यक्ति अपने पत्नी को मार रहा था, तो उसको बोला वो क्यों मार रहा है, बोले मेरे पिताजी मारते थे, मेरे को लगा यही करने हैं, मेरा काम है मारना, इनका काम है खाना, तो मेरे को लगता है यही हमारा परिवार मतलब यही होता है। बोला अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, मगर वो बेचारे ने दूसरा कुछ देखा ही नहीं उसने। मैं ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूँ, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो कंसेप्ट अलग है, मैं बोल रहा हूँ हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अनुभव करता है आजू बाजू में, वही वो समझ लेता है कि वही जीवन है, वही तरीका है, यही सिस्टम है। तो यहाँ पे हम अगर नीचे से आए हुए, वो तो राधा गोविंद महाराज आगे बताते हैं कि आप एक्सटर्नल फीचर्स को देख के भी समझ सकते हो कि व्यक्ति कहाँ से आए हैं। अभी वो डिटेल में बताते हैं कि दांत काले हैं, ये है वो है, एक दूसरे को नहीं देखना है हमको, हमको देखना है तो देखना है, नहीं तो नहीं देखने का भी जरूरत नहीं है। हम कहाँ से आए हैं उसका कितना भी एनालिसिस करेंगे तो कुछ फायदा नहीं उसका, इसलिए मत देखना, ये अच्छा है। यहाँ से संकल्पना समझने के लिए हम इसको देख रहे हैं, ये दूसरों को देखने के लिए नहीं है, ये कहाँ से आया होगा, वो कहाँ से आया होगा, हाँ जरूर नीचे से आया होगा क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ देता है, तो ऐसा तो हम बोल सकते हैं, मगर उसके लिए नहीं है सब ज्ञान। ये ज्ञान इसलिए है कि देखिए हम कहाँ से आए हैं। अगर अगर गलत चीजें करना स्वाभाविक है तो हम नीचे से आए हैं, और अच्छी चीजें करना स्वाभाविक है तो हम ऊपर से आए हैं। ऊपर से मतलब दुनिया के बाहर से नहीं, ये 14 लोगों की बात चल रही है, इधर से ऊपर से और नीचे से, ये मेरी गो राउंड है भगवान का, ऊपर नीचे नीचे ऊपर है, तो ऐसा धक्का मारते रहते हैं यमदूत और जो भी है, और हम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते मगर हम कहाँ से आए हैं ये जानना काफी आसान है। और ऊपर से आए वाले लोग बहुत मीठा बात करेंगे, शायद गुजरात में आते होंगे सब लोग ऊपर से, पता नहीं, हाँ तो ऊपर से आने वाला गुजरात में है और नीचे से आने वाला पता नहीं कौन से राष्ट्र उधर आते होंगे नीचे, मगर ऊपर से आया है कि नीचे से आया है वो आपको पसंद, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे दिखता है, उसे समझ में आता है कहाँ से आया और कहाँ जाने वाले, ये भी भगवान ने बताया, वो तो आसान है। हाँ क्या बोलते हैं वो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, जिस तरह का भाव इस जीवन में रखेंगे वहां हम जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्न उठाना कुछ काम का नहीं है। ऊपर ही जाएगा, वो नीचे नहीं जा सकता है। इतना अच्छा सवेरे उठेगा, जब करेगा, नाचेगा, दूसरों का सेवा करेगा। अगर इच्छा हो भी तो अपने सारे जो उल्टे सीधे भाव आते हैं उसको प्रकट नहीं करेगा, दबा देगा अंदर। हमको गुस्सा आता है, मगर शास्त्र में बोला है वैष्णव ने गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो बेचारा वो अपने गुस्से को पी लेता है, उसके ऊपर रबड़ी डाल के बंद कर देता है ताकि जिस दिन गुस्सा है उस दिन थोड़ा ज्यादा प्रसाद खा लेने का, ताकि वो थोड़ा वो प्रेशर से दब जाए नीचे। हरे कृष्ण वालों के पास कुछ तो ऑप्शन है, बाकी लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं, इसलिए धड़ाम करके बाहर ही आते। ऊपर नीचे उतर, ऊपर बचाने के लिए कुछ है नहीं बेचारों के पास। तो ठीक है, जो भी है, मगर कि हम इस तरह से, चाहे अंदर से, चाहे हमारे कुछ भी भाव हो, बाहरी तरीके से हम अगर भक्त के जैसा बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। जब भगवान बोलते हैं कि अगर कोई योगी है वो प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करता है, मगर दुर्भाग्यवश वो अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट नहीं कर सकता है योगी को, तो क्या होता है कि उसे बहुत अच्छे जीव घर में जन्म मिलता है। जब अच्छे घर में जन्म मिलता है तो अच्छा ही बर्ताव करेगा। उसको अच्छे घर में जन्म क्यों दिया है, क्योंकि इस जीवन में उसने अच्छा रहने की कोशिश की है, इसलिए अच्छा जीवन मिला है। और वो परफेक्ट हो जाता है वो, फिर तो छुट्टी, फिर तो सीधा गोलोक वृंदावन में भगवान उसको भेज देते हैं, भगवत धाम में भेजते हैं। वो सबसे अच्छा जगह है वो, और उससे अच्छा कोई जगह हो नहीं सकता है। तो ये अगर हम ये तत्व ज्ञान को पूरी तरीके से देखेंगे हमारे जीवन में, तो हमको पता चल सकता है कि हम ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान है, क्योंकि सब कुछ आप देखने को मिलता है। विज्ञान का मतलब होता है एक प्रयोग, एक प्रोग्राम होता है उसका। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो उस से रिलेटेड सारे चीजों का वो ठीक ठीक जवाब दें, लॉजिकल जवाब दें। तो अगर हम पुनर्जन्म के विज्ञान को अगर समझते हैं ठीक से, ये सब ये सिर्फ विज्ञान नए लोगों को समझने के लिए है, ऐसा नहीं है। समझने के लिए बहुत आसान विज्ञान है, मगर जब हम उसका पालन करना चालू करते तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो वासनाएं हैं, हमारे जो आज तक जमा किए वाले हमारे जो हमने भावनाएं हैं, वो बार बार उद्रेकित होते रहती है, बार बार ऊपर आते रहती है, और उसको कृष्ण भावनामृत में वो बाधा कर सकती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इस तात्पर्य में उसकी बात कर रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या बाहर का व्यक्ति जो भी है, वो अपने जीवन को चलाता कैसे है, वो अपने जीवन को पिछले वाले जीवन के हिसाब से चलाता है। जिस तरह उसने पिछला जीवन जिया है, उस तरह वो जीवन का बहुत बड़ा, उन जीवनों का बहुत बड़ा प्रभाव इस जीवन पे रहेगा। इसके बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो कुछ जगह पे चेतन चरण प्रभु या बाकी भक्तों ने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, कि हमारा जो मन है, ये मन के द्वारा जो आत्मा है, वो आत्मा एक चेतन व्यक्ति है, बाकी सब अचेतन है, मगर आत्मा की जो चेतना है वो मन के द्वारा सब तरफ परिवर्तित होती रहती। वो आत्मा चेतन है, मगर आत्मा का शरीर के साथ कुछ संबंध नहीं है ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि वो आत्मा चेतन आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है, इसलिए दोनों एक साथ कभी जल नहीं होने वाले। मगर आत्मा की जो चेतना है वो चेतना की वजह से सूक्ष्म शरीर काम करता है और सूक्ष्म शरीर के काम करने से भारी शरीर काम करता है। जैसे राधा गोविंद महाराज उदाहरण देते हैं कि पहले हमको दुख होता है, फिर रोना आता है, तो दुख अंदरूनी चीज है, चेतना दुख से अफेक्टेड हुई है, फिर आंसू बाहर आ रहे। तो भौतिक शरीर में जो बदल दिख रहे हैं आदमी के, वो बदल कहां से कंट्रोलिंग है, वो अंदर से कंट्रोल है। जैसे अंदर से कंट्रोल हो चुके मन या उसकी बुद्धि उस तरह से काम कर रही है, आज इस घटना में, आज इस टाइम में उसकी भौतिक सॉरी अंदरूनी सूक्ष्म शरीर जिस तरह से कार्य कर रहा है उस तरह से बाह्य शरीर काम करेगा। अंदर से उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो बाहर क्या होगा, आपको एक बड़ा स्माइल दिखेगा, वो चलेगा नहीं, नाचेगा, है कि नहीं। जैसे एग्जाम पास होने के बाद बच्चे खुश हो जाते हैं, तो खुश होते हैं तो फिर क्या होते हैं, चलते हैं क्या, नहीं, नाचते हैं, है कि नहीं। आप उसको पार्टी मांगो तुरंत मिल जाएगी, रोज नहीं मिलेगी मगर उस दिन मिल जाएगी, तो आपको पता चलना चाहिए कब पार्टी मांगना चाहिए लोगों को। जब वो खुश होंगे तो मांगने का सब जो चाहिए वो मिल जाता है, जब वो नाराज है तो जाके मांगने का नहीं, क्योंकि अगर सैंक्शन में रूल में बैठता होगा तो भी नहीं मिल जाएगा क्योंकि मूड खराब है। तो इसलिए अंदरूनी शरीर बाहर के शरीर को, राधा गोविंद महाराज तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते, मतलब अंदर पहले गुस्सा आता है, फिर होंट कांपना चालू करता है, फिर हाथ चलता है, बाद में पैर चलता है, फिर सब चलना फिर लाल हो जाता है, काला पीला नीला हो जाता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, पहले अंदर चेंज हुआ फिर बाहर चेंज होता है। तो ये एक सिचुएशन में माइंड कैसे काम करता है उसके ऊपर वर्णन किया हुआ है कि अगर हमारा आत्मा जो है चेतन है उसके ऊपर आवरण माइंड का है और वो तीन गुणों से आच्छादित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है माइंड, फिर वो बहुत अच्छी चेतना कृष्ण भावनामृत चेतना जो है वो चेतना दूषित हो जाती है ये माइंड तीन गुणों के आच्छादन में आने की वजह से। तो और उसके बाद भौतिक शरीर में उसका परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर माइंड प्रसन्न है, माइंड अच्छा है, गुडनेस में है, तो आपको देखेगा शरीर भी ठीक से काम कर रहा है। माइंड पैशन में है, रजोगुण में है, वो भी दिखेगा शरीर रजोगुण से काम कर रहा है। और माइंड अगर और हमारा मन जो है वो तमोगुण से भरा हुआ है तो हमको दिखेगा शरीर भी उस तरह से काम कर रहा है। तो ये बहुत वैज्ञानिक है, ये बहुत साइंटिफिक है। फिर ये माइंड के पास एक गोडाउन होता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अभी इसको संस्कृत वाले नाम मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो दो गोडाउन है इसका माइंड का भारी दृष्टिकोण से उसका एनालिसिस करने जाए तो दिखता है कि जैसे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हाउसिंग सोसाइटी है, तो उन लोगों का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो एक छोटे से रूम में बैठा हुआ रहता है। वो सिक्योरिटी सिस्टम एक मन की तरह है और वो सिक्योरिटी सिस्टम जो डिसीजंस लेगा वो आपको बाहरी जगह में देखने को मिलेगा। एक आधा आदमी उस सिक्योरिटी उस सोसाइटी में घुस रहा है और इन लोगों को उनको अंदर घुसने देना नहीं है तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे और ये आदमी अंदर घुस रहा है तो वहां पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। मगर पहले जो छोटा सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे शरीर में मन की तरह काम करता है वहां पे आप बदलाव देखने को मिलेगा हमको, फिर वहां से लेके ग्रॉस लेवल पे हमको बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये छोटे से शरीर से लेके एक बड़े से बड़ी जो सोसाइटी है वहां तक हमको सारी चीजों को सब कुछ करते हुए मिलेगा। श्रील प्रभुपाद तो उदाहरण देते हैं कि एक बड़ा कोई मशीन है, बुलडोजर है, जेसीबी है, तो उसका एक छोटा सा कंट्रोलिंग पॉइंट रहता है, वो कंट्रोलिंग पॉइंट जैसे काम करता है वैसे बाहर का बड़ा वाला मशीन काम करेगा। उसी तरह हमारा जो छोटा माइंड जो है वो जिस तरह से काम करेगा उसी तरह से शरीर भी काम करेगा, और सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड जहाँ शाह श्री प्रभुपाद यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं कि हम जब शायद भारी शारीरिक तरीके से या मानसिक तरीके से बहुत बिजी नहीं है, हाँ शांति चल रही है थोड़ा, शायद तूफान के पहले की भी शांतता हो सकती है मगर शांति है अभी, तो हम कुछ तो सोचना चालू करते हैं या कुछ तो हमको याद आते रहते हैं। तो ये कहां से आ रहा है? श्री प्रभुपाद यहाँ पे उसका उदाहरण दे रहे हैं कि कभी कभी एक पानी का तालाब जैसा कुछ है या छोटा सा पानी का जगह है और वहां से हमको वहां से वो बबल्स आते हुए देखते हैं, तो हालांकि पानी को किसी भी तरह का सा डिस्टर्बेंस हो नहीं रहा है तो भी उसमें बबल आते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ पानी के नीचे अंदर कुछ सड़ रहा है तो उसकी वजह से उसमें हवा निकल के ऊपर हवा आ रही है। तो ये पड़ा हुआ है बहुत सालों से, अंदर पड़ा हुआ है पानी में, अभी वो सड़ने की प्रोसेस में है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड भी एक माइंड का बहुत अंदरूनी पार्ट है और वहां पे बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, और उसमें हमने क्या स्टोर किया है, कब स्टोर किया है, तो हमने हजारों हजारों लाखों करोड़ों जीवन जो जिए हैं हमने, वो सारे जीवन में हमने वो सब जमा करके रखा है, हमारे सारे अनुभव, हमारे सारे इच्छाएं, हमारे सारे लोग संबंध, ये वो सब उनके उनके द्वारा जो जमा किया वाला सारा अनुभव का जो इकट्ठा चीज है वो उस सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। तो ऊपरी तरीके से जब माइंड शांत है, कुछ काम नहीं है, है कि नहीं, तब वो पहले की जो इच्छाएं हैं, पहले के जो संबंध है, पहले के जो हमारे अनुभव है, वो ऊपर आना चालू कर देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में मन के ऊपर नियंत्रण करने के बारे में बताया है कि हम कार्य में व्यस्त रहे, हम कार्य में व्यस्त नहीं रहते हैं। फिर क्या होता है कि पहले वाले चीजों को निकले के आके उसके ऊपर चरवन करते रहते हैं, है कि नहीं। बाहर के लोगों को आप पूछो, अरे इसके बारे में क्या सोचते हो तुम, उसके बारे में क्या सोचते हो, अगर सच में बिजी आदमी है तो बोलते हैं अरे मरने को टाइम नहीं, तो खाए को चर्चा कर रहे, इधर खाने को टाइम नहीं हमको, तो वो सोचने की बम्बूड में नहीं है, उसको एक्शन करना है क्योंकि अगला काम बाकी है, अगला टास्क बाकी है। इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड पे लगता है कि विजय प्राप्त किया है उसने, विजय प्राप्त नहीं किया है, वो सिर्फ बेचारा आगे के वाला टास्क की वजह से बिजी है, काम की वजह से बिजी है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर नियंत्रण किया वाला दिख नहीं रहा है। जैसे ही उसका काम बंद करो आप, तुरंत आपको उसके सारे भौतिक आसक्तियां देखना चालू हो जाएगा। इसलिए लोग काम करते हैं, काम करते जो चाहे उनको मिल जाता है, मिलने के बाद क्या करते हैं, जो उनको अंदरूनी जो इच्छाएं हैं वो उनको प्रकट करते रहते, फिर जाएंगे कुछ तो करेंगे, कुछ तो खाएंगे, कुछ तो पिएंगे, जो करना है करेंगे, जो नहीं करना है वो भी नहीं कर, सब वो करते रहते, इच्छाओं को पूरा करते रहते। इसका मतलब जब काम कर रहे तब इच्छा नहीं है ऐसा नहीं है, मगर काम में व्यस्त है इसलिए वो ऊपरी तरीके से दिखता नहीं। इसलिए हमें भी कृष्ण भावनामृत में, अगर कृष्ण भावनामृत में अगर हमें यश चाहिए इस जीवन के अंत में, तो निरंतर कृष्ण के सेवा में कंटिन्यूअसली सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। अगर ये जीवन हमने पार कर दिया, बाकी हमारे अंदर के मन के अंदर के इच्छाओं के ये वो सब बाजू को रख के इस जीवन को हमने पार कर दिया, तो बहुत बड़ा चीज होता है श्रील प्रभुपाद। इसलिए बहुत सारे भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में विनंती की थी कि आप कृपया ये एक लाइफ कृष्ण के लिए दे दो। आपने हजारों जीवन हजारों लोगों के लिए किया है, दिया है, कभी देश को दिया है, कभी उसको दिया है, किसको परिवार को दिया है, कभी बिजनेस को दिया है, कभी रिकॉर्ड बनाने के लिए दिया है। कुछ कुछ लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं छोटा सा रिकॉर्ड बनाने के लिए, है कि नहीं। क्या क्या रिकॉर्ड बनाया, तो 20 साल भाग भाग के बेचारे ने एक छोटा रिकॉर्ड बनाया कि इतने थोड़े से टाइम में उतने इतना दूर भागा। अरे जीवन खत्म कर दिया उसके लिए आपने, कुछ भी पाया नहीं उसके लिए जीवन खत्म कर देते हैं। तो हमको अगर वैकुंठ प्राप्त मिलने वाला है तो एक जीवन क्या बड़ा चीज है, बहुत छोटा चीज है एक्चुअली। जो डिमांड कर रहे हो तो बहुत छोटी है, जो दे रहे हो बहुत बड़ा है। तो इसलिए एक जीवन तक हम ऐसा अपने इस उल्टे सीधे इच्छाएं हमारे जीवन में बबल्स ऐसे आ रहे हैं हमारे, उनको दूर रख के, उनको निग्लेक्ट करके हम अपने कृष्ण भावना अमृत की जो कार्यों की जो श्रृंखला है उसको कंटिन्यू करते हैं, एक आधा जीवन देते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम हमारे जीवन में कृष्ण भावना अमृत को पूरा भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी ऐसा जीवन मिलेगा जो जीवन हमको अंदरूनी इच्छाओं से हमको ये नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा हमको। अगले जीवन में हमारे इच्छाएं, अगले जीवन में हमारे इच्छाएं कृष्ण भावना भावित होगी, क्योंकि वो नेचुरल है, जो हमने जमा किया वो बाहर आते रहता है। अगर इस जन्म में हमने जमा किया, बड़े मेहनत से जमा किया, मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा, कृष्ण के ही बारे में बोलूंगा, कृष्ण ही का ही प्रसाद खाऊंगा, जो भी करूंगा कृष्ण के यत करोश यदश्नाश यज्जोश यदास यत तपस्या कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कृष्ण बोल रहे, अरे तुमको जो करना है करो, करने के लिए कोई क्या बोलते हैं उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, मगर किसके लिए करना है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन रखा। आप कुछ भी कर सकते हो। कल मैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, बहुत अच्छा तात्पर्य है उसमें। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप जब साधना भक्ति के स्तर पे जब भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, तो आप कृपया जो आपको सेवाएं बोली गई है, जो आपको सेवाएं करने के लिए कही गई है वो कीजिए, मगर आप कृष्ण की सेवा करते करते कुछ सालों के बाद, कुछ हाँ जन्मों के बाद, पता नहीं कितने, अपना अपना डिसाइड करने, मगर जब आप कृष्ण की सेवा करने में रत हो जाते हैं, कृष्ण की सेवा करने में रत हो जाते हैं, तो उसके हृदय में जो भी कृष्ण की सेवा करने के लिए भावनाएं, वो रागानुगा साधना भक्त के बारे में बोल रहे हैं, उसके हृदय में जो भी कृष्ण के बारे में सेवा करने के लिए भावनाएं उत्पन्न होती है उसको उसने करना चाहिए। एक बार जैसे आप देखते हैं कि कुछ लेवल पे ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग होने के बाद उसको समझ में आता है ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो ट्रेनिंग अच्छे से करने, और उसके बाद अभी पता नहीं कितने आप अप्रिशिएट करेंगे उसको पता नहीं, मगर उस ट्रेनिंग के भगवत भक्ति के ट्रेनिंग के ऊपर से हमें भगवान की जिस तरह से सेवा करने का हाँ प्रेरणा मिलता है, उस तरह से करने का, बाउंड्री के बाहर नहीं जाने का प्रेरणा मेरे को मिल रही है कि मैं हाँ, ये उल्टी सीधे प्रेरणाओं की बात नहीं कर रहे हम लोग, हम बहुत जो साधना भक्ति के अंदर जो प्रेरणाएं दी गई है ना वो उसकी बात कर रहे हैं। साधना भक्ति के बाहर वाली प्रेरणा को लेके कुछ कर रहे हैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो साधना भक्ति के अंदर जो इच्छाएं, यत करोषी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौंतेय, मेरे को लग रहा है कि मैं चोरों को भक्त बनाऊं, ये वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की इच्छाओं को जब वो करता है साधना भक्ति में, तो वो ट्रेनिंग हो जाता है उसका। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में गाते हैं, बहुत सुंदर है, वो बोलते हैं कि मेरे को इंद्रिय तृप्ति करने की जो आदत लग गई है, आदत लग गई, हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। अभी हम जब सवेरे आते हैं तो हमको जपा के ऊपर महत्व समझने के लिए जपा का बारे में महत्व सुनना पड़ता है, आज मेरे को जप करना है तो दो चार लाइन पढ़ो कि जप करने से क्या होता है, तो फिर अगर हमारा इच्छा कम हो रहा है जप करने का आज का, और सोने का दिल कर रहा है, तो शायद वो पढ़ने की वजह से आज कंटिन्यू करेगा, मगर ऐसा हमको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। उसको कोई लेक्चर वेक्चर दे के, अब महासत्संग प्रोग्राम अटेंड करो 7 दिन का, तब जाके आप इंद्रिय तृप्ति करने के लिए चालू करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो चालू होता है वो, चालू ही रहता है। उसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे भगवान को, विषय जे प्रीति होए आचाय अमर सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार, क्या इस तरह की प्रीति चाहिए आपके चरणों के प्रति जैसे इस दुनिया में इंद्रिय तृप्ति करने की एकदम सरल स्पॉन्टेनियस वृत्ति है मेरी, उस तरह की स्पॉन्टेनियस वृत्ति आप आपके चरणों की सेवा करने के लिए दीजिए और ये हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त कर सकते, हमको लगता है आज कितना तकलीफ है, मेरे को भगवान की सेवा करने के लिए मेरे को बार बार लेक्चर सुनना पड़ता है, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, मगर यह ये प्रेरणा ले लेके यहाँ अगर हम ये जीवन पूरा व्यतीत करते हैं भगवान की सेवा में तो हम रागानुगा, हाँ रागानुगा मतलब स्पॉन्टेनियसली हम भगवान की सेवा करने की ही इच्छा हमारे जीवन में जागृत होगी। ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई भक्ति भावना में अपना जीवन व्यतीत करता है तो अगला से अगला और अगला जीवन बहुत 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 सुंदर तरीके से वो बिता सकता है कृष्ण भावना भवित। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथरा श्रीमद भागवत महापुराण की जय।